समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
हाँ जी, तो कैसा रहा कल का दिन? कितनी मिठाई खाई और खिलाई, कितने मेहमानों की मेजबानी की, आप खुद कितने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और जान पहचान वालों से मिलने गए। दिवाली के लिए कितनी खरीदारी की, दिए, मोमबत्ती, रोशनी की लड़ियों से अमावस का अंधेरा कितना दूर किया, और ये सब करके कितना अच्छा लगा। यकीनन मजा आया होगा, त्योहार सफल हो गया होगा, है ना? और इसी उत्साह का संचार आज रात तक भी जारी रहने का पूरा इरादा होगा आपका, क्योंकि दिवाली अभी खत्म कहाँ हुई है, अभी तो आज भी ये सब कुछ चलने वाला है ना। लेकिन इतने सारे सवालों के बीच एक सवाल पूछना मैं आपसे भूल ही गई, ये बताइए आतिशबाजी कितनी चलाई कल? देखा, चुप हो गए ना। प्रदूषण फैलाने में क्या आपने भी अपना भरपूर योगदान दिया कल? ये सही है कि दिवाली है और इस मौके पर आतिशबाजी चलाना भी बनता है, मगर पर्यावरण में फैले प्रदूषण के मद्देनजर अगर हम इसे कम करके सिर्फ शगुन के तौर पर जलाएं तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ज्यादा उपदेश नहीं दूंगी, सिर्फ एक छोटा सा अनुरोध करूंगी कि आतिशबाजी के बारे में मेरी इस बात पर जरा सा गौर फरमाएं, और अगर कहीं लगे कि वाकई एक सीमा के अंदर आतिशबाजी चलाना बेहतर है बजाय इसके कि औरों से होड़ में बेतहाशा पटाखे जलाकर वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण जैसे मसलों को बढ़ावा दिया जाए और अपनी और आने वाली नस्लों की सेहत और जिंदगी के साथ खिलवाड़ की जाए। दिवाली की शुभकामनाओं के साथ आगाज करते हैं FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। साथ हूं आपके मैं नईम अख्तर और मेरी साथी नीना मैथ्यू। नीना, आपका आज का दिन बहुत शुभ हो, और कैसी रही आपकी कल की दिवाली और आज क्या आपका इरादा है?
Yes, Diwali is a festival of lights, and it was really wonderful that we enjoyed. And I pray that we continue to illuminate the light inside our hearts too.
Actually, that is the main thing.
Yes. And good morning and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network. We bring you our ever-exciting daily news magazine program, Aaj Savere, wherein over the next half an hour, we will bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 1st of November. So let us begin with the headlines first. Naeem?
Ji, bilkul.
Prime Minister Narendra Modi has said that India is moving towards one nation civil code, that is a secular civil code, addressing Rashtriya Ekta Divas celebrations at Kevadia in Gujarat yesterday. Mr. Modi said that the pursuit of a secular civil code is key to ending discrimination. Prime Minister said, "Today we are all seeing the success of one nation identity, Aadhaar, and the world is also discussing it." He said earlier there were different tax systems in India, but we created the one nation, one tax system, GST. Prime Minister said his government strengthened the country's power sector with one nation, one power grid and integrated the facilities available to the poor through one nation, one ration card. Mr. Modi said, "We have provided the facility of one nation, one health insurance to the people of the country in the form of Ayushman Bharat." He said, "Under these efforts of ours for unity, we are now working towards one nation, one election, which will strengthen India's democracy, which will give optimum outcome of India's resources, and the country will gain new momentum in achieving the dream of a developed India."
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी से निर्मित इस संयंत्र पर 375 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरे से प्रतिदिन 15 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये गुजरात का पहला कचरे से ऊर्जा संयंत्र होगा।
The National Stock Exchange, NSE, and the Bombay Stock Exchange, BSE, will conduct their annual Diwali Mahurat trading session today. This special trading session will mark the beginning of the new calendar year, Samvat 2081. According to NSE's notification, the pre-open trading session will commence at 5:45 p.m. and end at 6 p.m., while normal market trading will span between 6 p.m. and 7 p.m. Muhurat trading is a live trading session organized by the Indian stock exchanges on the day of Diwali and mostly lasts for about an hour. It is considered an auspicious time to make investments by investors and traders. During this session, investors and traders often buy stocks and commodities to mark the beginning of a new financial year.
झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में नामांकन वापस लेने के बाद कुल 685 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।
Raksha Mantri Rajnath Singh said that India and China have been holding talks at both diplomatic and military levels to resolve the differences in some areas along the line of actual control, LAC. As a result of the talks, a broad consensus was developed on the basis of equal and mutual security. He said this after virtually inaugurating the statue of Sardar Vallabhbhai Patel and Major Ralengnau Bob Kathing Museum of Valor at Tawang yesterday. He said that the statue of Sardar Patel in Tawang will inspire people, reminding them of the strength and unity and the unwavering spirit required to build a nation as diverse as India.
ब्राजील ने चीन की अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड पहल BRI में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। ब्रिक्स देशों में भारत के बाद अब ब्राजील दूसरा देश है जिसने चीन की इस बड़ी परियोजना को नकार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेष सलाहकार सेल्सो एमोरिम ने बताया कि BRI में शामिल होने के बजाय ब्राजील चीनी निवेशकों के साथ सहयोग के वैकल्पिक तरीके तलाशेगा। ब्राजील में आम राय है कि चीन की इस परियोजना से ब्राजील को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे संभावित ट्रंप प्रशासन के साथ भी संबंध जटिल हो सकते हैं। अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई ने हाल ही में ब्राजील से चीन के इस प्रस्ताव पर बारीकी से और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए विचार करने को कहा था। ब्रासिलिया में मौजूद चीनी दूतावास ने कैथरीन टाई की इस टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक बताया था।
In Hailo Open Badminton Tournament, all four Indian badminton players, Malvika Bansod, Ayush Shetty, Satish Kumar Karunakaran and Rashkita Sri, entered into quarterfinals at Saarbrücken in Germany. Seeded sixth at the BWF Super 300 tournament, Malvika Bansod secured a win over unseeded Irene Amelie Anderson in her women's singles round of 16 contest. India's 17-year-old Rakshita Sri Santosh Ramraj stunned two-time Commonwealth Games medalist and second seed Kirsty Gilmer of Scotland with a dominating win in her women's single round of 16 match. In the men's singles, the 19-year-old Ayush Shetty, who won the bronze medal at the Junior World Championships last year, beat Italy's Giovanni Totti to set up a contest with Finland's Kalle Koljonen for a place in the last four. Satish Kumar Karunakaran, seeded seventh, defeated England's Harry Huang.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज वार्षिक दिवाली मुहूर्त कारोबार सत्र आयोजित करेंगे। इस विशेष कारोबार सत्र के साथ नए कैलेंडर वर्ष संवत 2021 की शुरुआत होगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अधिसूचना के अनुसार प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन शाम 5:45 पर शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। और एक खबर हमारे पास क्रिकेट के बारे में है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 से शुरू होगा। न्यूजीलैंड पहले दोनों टेस्ट मैच में भारत को हराकर श्रृंखला जीत चुका है। बेंगलुरु टेस्ट में भारत को 8 विकेट से और पुणे टेस्ट में 113 रन से हार का सामना करना पड़ा था। भारत पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह पक्की करने का भी दबाव है। अब 6 टेस्ट मैच और खेले जाने हैं, इनमें 5 टेस्ट इस महीने ऑस्ट्रेलिया में होंगे। भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए कम से कम 4 टेस्ट मैच जीतने होंगे। और अब नीना हमारे पास प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं, वो अपने श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। शुरुआत आप करती है।
यस नेम, लेट्स मूव टू चेन्नई।
जी,
Cricket star Dinesh Karthik was a part of World Stroke Day awareness organized by SIMS Hospital along with a diverse group consisting of stroke survivors, healthcare professional and corporate teams united by a common goal to raise awareness about stroke and inspire hope for recovery. A cricket match was held for a strike against stroke by corporate teams and healthcare professionals as part of the event. The match was won by TCS while Equitas Bank and Breaks India were the runners-up. Karthik said that it was an honor to be a part of the initiative and asserted that it can be avoided by maintaining physical activity and fitness. Security has been tightened at Chennai Airport as there has been a surge in false bomb threats observed. The airport has experienced a series of flight delays over the past couple of days due to hoax bomb threats which specified flight names. The airport authorities are now scrutinizing departing flights at the secondary ladder point at Chennai Airport. The Bureau of Civil Aviation Security and the airport authority are working together to prevent such fake disruptions. Moving on to Bengaluru. Bengaluru's civic body, the Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike BBMP, sealed four properties in Middletown on MG Road on Wednesday for property tax defaults. BBMP's East Zone has intensified efforts to recover dues, specifically targeting top defaulters in each zone before the third quarter when its one-time settlement scheme ends. Officials report 2,418 properties with outstanding taxes amounting to 66 crore rupees in dues and BBMP have begun issuing attachment orders to facilitate recovery. And now some more news from Hyderabad. Telangana Governor Jishnu Dev Verma celebrated the formation of Day of Jammu and Kashmir and Ladakh at Raj Bhavan in Hyderabad yesterday. The event, held under the national initiative Ek Bharat Shreshth Bharat, celebrated the rich heritage, historical contributions and future vision of these regions. The Governor highlighted the event's significance as part of Prime Minister Narendra Modi's vision to foster unity and culture connections across India. The governor noted that the program promotes interaction and mutual understanding, celebrating India's diverse languages, traditions, tourism, sports, and best practices through Ek Bharat Shreshth Bharat. The governor further said, "This Formation Day observance honors the deep cultural heritage of Jammu and Kashmir and Ladakh and strengthens our shared identity as Indians." Mr. Verma added that the events like this inspire great appreciation and respect among our country's regions, building lasting bonds of friendship. He recalled his memories connecting Jammu and Kashmir on the occasion. Representatives from Jammu and Kashmir and Ladakh expressed their appreciation for the celebration, emphasizing the sense of connection and solidarity it fostered.
और दिल्ली की खबरों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट लगातार जारी है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कल शाम 6 बजे शहर की हवा बहुत खराब श्रेणी में रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 327 दर्ज किया गया. हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एजेंसियों द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. शहर में जगह जगह वाटर स्प्रिंकलर्स मशीनों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है. साथ ही सड़कों की सफाई के लिए स्वचालित मशीनों का उपयोग किया जा रहा है. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी तक शहर में किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री, भंडारण और जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने धुएं की रोकथाम और पटाखों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित पंजाब को भी निर्देश दिए हैं. आयोग ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को समन्वय के साथ काम करने का भी निर्देश दिया है. वहीं वायु प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि जरूरी काम के लिए ही लोग घरों से बाहर निकलें. इसके अलावा अपनी यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. एक और खबर दिल्ली से है. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC द्वारा लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए शनिवार यानी कि कल जयसिंह रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में सुविधा शिविर का आयोजन किया जाएगा. इस शिविर में स्वास्थ्य, बिजली के नए कनेक्शन तथा लोड बढ़वाने और दुकानों के लाइसेंस जैसी लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे. रुख करते हैं मुंबई की तरफ. सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मध्य रेलवे 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति थीम के तहत सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। कार्यक्रम के दौरान इस वर्ष की सतर्कता थीम पर प्रकाश डालते हुए मस्त कलंदर नामक एक लघु फिल्म दिखाई गई। वाद विवाद, निबंध, चित्रांकन, नारे, नाटक और लघु फिल्मों सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ नाटक का लाइव प्रदर्शन किया गया। मध्य रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा प्रकाशित एक विशेष समाचार बुलेटिन सुबोध का भी अनावरण किया गया। एक और खबर मुंबई से है। दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर यात्रा करने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे एलटीटी से दानापुर तक और वापस एक और अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाएगा। सुबह 1:01:05 एलटीटी दानापुर अनारक्षित विशेष ट्रेन शनिवार 2 नवंबर 2024 को एलटीटी से रात 12:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन 9 बजे दानापुर पहुंचेगी। 01076 दानापुर एलटीटी अनारक्षित विशेष ट्रेन रविवार 3 नवंबर 2024 को दानापुर से 12 बजे रवाना होगी और अगले दिन 11:55 पर एलटीटी पहुंचेगी। ट्रेन ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, छिवकी, न्यू वेस्ट केबिन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और बक्सर में रुकेगी। और नीना, एक आखिरी खबर मेरे पास कोलकाता से है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अनुसार कक्षा 5 को प्राथमिक अनुभाग से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसे अगले शिक्षा वर्ष में लागू किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में कक्षा 5 उच्च प्राथमिक अनुभाग से जुड़ी हुई है। पहले चरण में 2,335 स्कूल जुड़ेंगे। आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा और आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं। और महानगरों की खबरों के बाद आप महानगरों के मौसम के बारे में जिक्र कर लेते हैं।
यस नहीं,
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय धुंध छाई रहेगी, बाद में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में भी सुबह के समय धुंध छाने और बाद में मौसम साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
हियर्स वेदर न्यूज़ फ्रॉम चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद।
जी,
Chennai is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और वक्त है आपके 1 नवंबर के इतिहास पर एक नजर डाल दीजिए।
Sure. Today is All Saints Day, celebrated by Christians to remember and commemorate holy men and women who sacrificed and dedicated their lives in the service of God and humanity. In 1512, Michelangelo's just completed paintings on the ceiling of Vatican's Sistine Chapel were publicly unveiled by the artist's patron, Pope Julius II. In 1604, William Shakespeare's tragedy Othello was first presented at the Whitehall Palace in London. In 1765, the Stamp Act passed by the British Parliament went into effect, prompting stiff resistance from American colonies.
1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स व्हाइट हाउस में रहने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। 1858 में आज के दिन भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के शासक के पास चला गया और गवर्नर जनरल की जगह अब वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी।
In 1870, the United States Weather Bureau made its first meteorological observations.
1881 में कोलकाता में ट्राम सेवा स्यालदह तथा आर्मेनिया घाट के बीच शुरू हुई। 1913 में स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर आंदोलन की शुरुआत की और 1922 में आज के दिन ऑटोमन साम्राज्य का अंत कर दिया गया।
In 1950, the first steam engine in India was built at the Chittaranjan Rail Factory.
1954 में फ्रांसीसी क्षेत्र पांडिचेरी, करिकल, माहे और यानोन भारत सरकार को सौंपे गए.
In 1956, the state of Kerala was formed today and Delhi became a union territory of the Indian Union.
और 1966 में आज ही के दिन हरियाणा राज्य की स्थापना हुई और 1972 में कांगड़ा जिले के तीन जिले कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर बनाए गए.
In 1973, the name of the Mysore was changed to Karnataka. In 1989, East Germany reopened its border with Czechoslovakia, prompting tens of thousands of refugees to flee to the West. In 1995, peace talks opened in Dayton, Ohio, with leaders of Bosnia, Serbia and Croatia.
और आज ही के दिन 2000 में सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ. तो ये तो थी कुछ खास ऐसी बातें जो आज के दिन 1 नवंबर को इतिहास में घटित हुई. और आज ही के दिन यानी 1 नवंबर को कुछ ऐसी महान शख्सियतें भी हैं जो या तो आज ही के दिन जिन्होंने जन्म लिया या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को छोड़ दिया. तो अब उन्हीं को याद करने का वक्त है, उनको याद कर लेते हैं. दामोदर मेनन, आज उनकी पुण्यतिथि है. भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे दामोदर मेनन. तत्कालीन समय में उनकी गिनती देश के बेहतरीन पत्रकारों में भी की जाती थी. उन्होंने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया. समाजवादी विचारों के होते हुए भी दामोदर मेनन गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास रखते थे. दामोदर मेनन का जन्म 10 जून 1906 को केरल के करमलूर नामक स्थान पर हुआ था और उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की थी. 1957 में उन्हें केरल विधानसभा का सदस्य चुना गया. दामोदर मेनन की गिनती उच्च कोटि के पत्रकारों में की जाती है और इनके आर्थिक विचार बड़े ही उदार हुआ करते थे.
ऐश्वर्या राय बच्चन आल्सो सेलिब्रेट्स हर बर्थडे टुडे. शी इज एन इंडियन एक्ट्रेस एंड द विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड 1994 पेजेंट.
जी.
Through her successful acting career, she has established herself as one of the most popular, influential celebrities in India name.
जी जी बिल्कुल. 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर कर्नाटक में उनका जन्म हुआ था और वो उन गिनी चुनी चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक विशेष पहचान दिलाई. न सिर्फ उनका चेहरा उनका नाम पहचाना जाता है बल्कि उनकी वजह से भारत का भी एक खास मकाम है. ऐश्वर्या राय यानी के भारत 1994 में मिस इंडिया जो आपने बताया कि प्रतियोगिता की उपविजेता बनी थी, इसी वजह से बाद में उनको मिस वर्ल्ड यानी कि विश्व सुंदरी की भी प्रतियोगिता जीतने का मौका मिला. और बाद में तो खैर वो फिल्मों भी आई, उससे पहले मॉडलिंग किया करती थी, बाद में फिल्मों में भी आई.
यस, शी मेड हर एक्टिंग डेब्यू इन मणि रत्नम्स 1997 तमिल फिल्म इरुवर.
इरुवर, राइट जी.
एंड हैड हर फर्स्ट हिंदी फिल्म रिलीज इन और प्यार हो गया दैट सेम ईयर.
हाँ, और उसमें उनके हीरो जो थे वो बॉबी देओल थे. और इसके अलावा उन्होंने हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, बांग्ला, अंग्रेजी सभी भाषाओं में फिल्मों में काम किया है. और अपने दमदार अभिनय और अपनी खूबसूरती के बल पर समीक्षकों के साथ साथ दर्शकों का भी दिल खूब जीता है. तो ये तो सारी बातें ऐश्वर्या राय के बारे में वो हैं जो हम जितना कहें उतना थोड़ा है. मतलब बहुत सारे पुरस्कार उन्होंने जीते हैं.
She has worked in Bengali film चोकर वाली,
राइट. इसीलिए भारत सरकार ने उन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार देकर के भी सम्मानित किया था. और जैसे कि आपने अभी बताया कि इरुवर से शुरुआत की थी और हिंदी फिल्मों में और प्यार हो गया उनकी पहली फिल्म थी. तो और प्यार हो गया के ही एक बहुत खूबसूरत गीत के साथ साथ और भी कुछ गीतों एक मेडली हम सुनते हैं जो ऐश्वर्या राय पर पिक्चराइज्ड है.
डोला 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 डोला
मजा आया और सभी को अच्छा लगा होगा सुनकर के। हालांकि इनके बहुत सारे सॉन्ग्स हैं लेकिन सारे तो सुनवाना पॉसिबल नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं एक और बड़ी हस्ती की जिनकी आज जयंती है, नाम है उनका अब्दुल कावी देसनावी। इनकी आज जयंती है, उन्होंने उर्दू भाषा के लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई। साहित्य का गजब का ज्ञान था अब्दुल कावी को और यही वजह है कि भारत और उर्दू भाषा की दुनिया की वो एक जानी मानी हस्ती बनकर के उभरे। अब्दुल कावी देसनावी न सिर्फ एक मशहूर लेखक बल्कि एक उर्दू शायर, आलोचक और भाषाविद भी थे, यानी उनको भाषा का बहुत ज्ञान था। 1 नवंबर 1930 को बिहार राज्य के नालंदा जिले के देसना गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता सैयद मोहम्मद सईद रजा उर्दू, अरबी और फारसी भाषा के प्रोफेसर थे और वो सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में पढ़ाते थे। अब्दुल कावी देसनावी की पढ़ाई मुंबई में हुई, उनकी पढ़ाई सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुई। उर्दू से जुड़ाव भी ग्लैमर की दुनिया वाले इसी शहर में रहने के दौरान हुआ, क्योंकि बिहार के देसना के रहने वाले थे इसलिए उनका नाम देसनावी हुआ और अब्दुल कावी उनका नाम था। हालांकि उनके चाचा सुलेमान भोपाल में रहते थे, ऐसे में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने अपना रुख मुंबई से भोपाल की तरफ भी कर लिया था। इसके बाद वो भोपाल के मशहूर सेफिया कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर भी हो गए। और बहुत सारी बातें इनके बारे में बताने होगा लेकिन बस सिर्फ इतना बता देना जरूरी समझती हूं कि 1998 में परवेज शाहिद पुरस्कार, 1979 में वरिष्ठ फेलोशिप और 1957 में शिबली पुरस्कार देकर भी इनको सम्मानित किया गया।
टुडे इज ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इलियाना डे क्रूज, हु इज एन इंडियन एक्ट्रेस हु प्रेडोमिनेंटली अपीयर्स इन तेलुगु एंड हिंदी फिल्म्स। शी हैज ऑल्सो स्टार्ड इन टू तमिल फिल्म्स। डे क्रूज वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ फॉर द 2006 तेलुगु फिल्म देवदासु। हियर इज अ मूवी एक्सर्प्ट फ्रॉम हर मूवी रेड।
साथी जिंदगी में करते रहते हो लेकिन काम में तुमने आज तक नहीं की, आदत नहीं है तुम्हें।
तुम्हें कैसे पता मैं
बीवी हूँ तुम्हारी? चुप चुप के फाइल का कवर पढ़ना आता है।
ये दिन है प्यार ही रिये जो साथ हमने जी रिये।
आज है जन्मदिन मुरलीकांत पेटकर का, जिनका जन्म 1 नवंबर 1947 को सांगली महाराष्ट्र में हुआ था और वह भारत के पैरा एथलीट रहे हैं। वो पैरालंपिक ही नहीं ओलंपिक के इतिहास में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जिताने वाले एथलीट थे। उन्होंने जर्मनी में आयोजित हुए पैरालंपिक्स में स्विमिंग के 50 मीटर फ्री स्टाइल में रिकॉर्ड 37.33 सेकेंड में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। 2018 में मुरलीकांत पेटकर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
Timothy Donald Cook celebrates his birthday today. He is an American business executive and industrial engineer. Cook is the chief executive officer of Apple Incorporated and previously served as the company's chief operating officer under its co-founder Steve Jobs. Cook joined Apple in March 1998 as a senior vice president for worldwide operations and then served as the executive vice president for worldwide sales and operations.
और आज ही जन्मदिन है पद्मिनी कोल्हापुरे का, जो एक अभिनेत्री हैं, गायिका हैं और खास तौर पर उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया है। 4 दशक से अधिक के करियर में उन्होंने 75 से अधिक फिल्मों में काम किया और 3 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने अपने अभिनय सफर 1972 में 7 साल की उम्र में शुरू किया था और उनको बहुत सारी फिल्मों के लिए बहुत सारे अवार्ड मिले। क्योंकि हमने कहा 7 साल की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया था, तो चलिए उन्हीं पर पिक्चराइज कुछ ऐसे गीत सुनते हैं। मैं पहला गीत जो है वो उनके बचपन पर ही पिक्चराइज किया गया है।
जीना उसका जीना है जो रातों को जीवन देता है,
मधुमेह खुशबू देता है।
ये गलियां ये चौराहा यहां आना ना दोबारा, ये गलियां ये चौराहा।
देखिए हमें तो हमें तो बार बार आते रहना पड़ेगा हर रोज आपके लिए आज सवेरे कार्यक्रम लेकर के, लेकिन अभी वक्त हो गया है कि FM 100.1 MHz पर आपसे इजाजत ले ली जाए आज सवेरे कार्यक्रम खत्म करने की। तो इजाजत दीजिए मुझे नईम अख्तर और मेरी साथी नीना मैथ्यू को। नमस्कार, नमस्कार।